भजन संहिता 66, भजन 66 पद 1 और 2। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। प्रभु के नाम की महिमा गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। मनुष्य कैसे उसकी स्तुति करेगा? वचन कहता है उसके महिमा के कार्यों को देखकर। भजन 66 पद 3 से लेकर 4 तक। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। यहां फिर से सब यीशु के नाम से घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचा उठाया है और एक नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, कि यीशु मसीह के नाम से सब घुटने टेकें और हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। भजन 66 पद 5 और 6। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भययोग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में से पांव पांव पार उतरे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। देखो परमेश्वर ने क्या किया, लाल सागर को सुखा दिया ताकि उसके लोग सूखी भूमि पर होकर अपने देश जा सके। भजन 66 पद 7 से लेकर 12 तक। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, हटीले अपने सर ना उठाएंगे। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नाई ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुटचड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तू हमको उभार के सुख से ले भर दिया है। परमेश्वर ने हमें आग और पानी से निकाला, ये हमारे लिए आवश्यक था, क्योंकि वो हमारा शोधन करना चाहता था, वो हमारे जीवन को पवित्र बनाना चाहता था, जिससे कि हम मसीह की बहुतायत में आ सके। यीशु ने कहा, यूहन्ना 15:1-2, सच्ची दाखलता मैं हूं, जो डाली मुझ में है और फलती है उसे वो छाटता है ताकि और फले। यदि आप आज इसराइल जाएं तो बेतलहेम और हेब्रोन के बीच में एशकोल की घाटी देखेंगे, जहां से यहोशू और कालेब ने अंगूर का गुच्छा तोड़ा था। वो इतना बड़ा था कि वे उसे एक डंडे पर लटकाकर लाए थे। एशकोल की घाटी में दुनिया के सबसे बेहतरीन अंगूर लगते हैं, और मजेदार बात यह है कि ये अंगूर भूमि पर लगते हैं। यहां जमीन में पत्थरों की बहुतायत है, वे भूमि पर विकसित होते हैं। वे लोग इनके लिए बाड़ा नहीं बनाते, ना वे तार या रस्सी पर बेल चढ़ाते हैं, तो भी अंगूर शानदार होते हैं। जब अंगूर गर्मियों में बढ़ने लगते हैं, तब वे आकर अंगूर की बेल को उठाकर अंगूरों को धोते हैं, ताकि वे बहुतायत से बढ़े और अधिक फल लाए। यदि वे बस भूमि पर पड़े रहें तो सड़ सकते हैं, इसलिए वे उन्हें उठाते हैं, हिलाते हैं और उन्हें धोते हैं। येशु ने कहा, यूहन्ना 15:2-3, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर का कार्य आपके जीवन को धोने और साफ करने का है। परमेश्वर का कार्य आपके जीवन को आग के द्वारा शुद्ध करने का भी है, जैसे सोना या चांदी ताई जाती है। परमेश्वर के शुद्धिकरण के कार्य का परिणाम है अधिक फल लाना, अर्थात उसकी महिमा का उत्तम फल। क्योंकि मूल रूप से परमेश्वर यही चाहता है कि आपके जीवन से उसकी महिमा के लिए फल प्रकट हो। परमेश्वर आप में कार्य करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, परंतु परमेश्वर आप में कार्य करके ही संतुष्ट नहीं होता। परमेश्वर का कार्य पहले मुझ में होता है, जो आवश्यक है। फल पर पहला हक खेती करने वाले का होता है। परमेश्वर मुझ में कार्य करता है क्योंकि उसने मुझ में पहले भी कार्य किया है। अब वो मेरे द्वारा कार्य करेगा कि मैं अपने चारों ओर जरूरतमंदों की सहायता करूं। परमेश्वर कार्य करता है जो आपके लिए है, फिर वो उनकी सहायता के लिए काम करता है जो जरूरतमंद है। परमेश्वर सदा एक उद्देश्य रखता है कि वो मेरे जीवन के द्वारा, मेरे छू लेने के द्वारा कार्य करता है। हमें परमेश्वर को धन्य कहना चाहिए और ऊंची आवाज में उसकी स्तुति करनी चाहिए। वह आपके कदमों को डगमगाने ना देगा। उसने हमें प्रमाणित किया है और चांदनी की तरह ताया है, ताकि वो हमारे जीवन में वो फल लाए जो मन की शुद्धता से होता है। जब वो आपको समृद्धि के स्थान में लाता है, तब आप जानेंगे मसीह यीशु में आप कितने धनी हैं। परमेश्वर का धन यीशु मसीह में कितना बड़ा है। भजन 66:13, मैं होमबलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा। होमबलि शोधन की बलि होती थी, इसलिए मैं होमबलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, जहां मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करूंगा। भजन 66:13-14, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। सब मन्नतें परमेश्वर से मानी जाती है जब मनुष्य परेशानी में होता है। मैंने तूफान में उठती लहरों को देखा है, जिन्हें रोकना व्यर्थ होता है। वे आश्चर्यजनक रूप से उठती है और परमेश्वर से मन्नत मानने का कोई ना कोई कारण होता है। मैं इन लहरों के साथ ऊपर उठकर जब नीचे देखता हूं तो डर कर कहता हूं, प्रभु यदि तू मुझे इनसे बचा ले तो मैं वादा करता हूं मैं सीधा घर जाऊंगा। इसे कहते हैं मन्नत मानना। जब मैं परेशानी में होता हूं, प्रभु मुझे इस झंझट से छुड़ा, मैं तेरी सेवा करूंगा, यहां से निकलने में मेरी सहायता कर और मैं तेरे भवन को जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा प्रभु, बस मेरी सहायता कर। प्रभु मुसीबत में की गई आपकी मन्नतों को सुनता है और आपकी सहायता करने के बाद वो चाहता है कि आप भी अपना वादा पूरा करें। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी है और संकट के समय कही थी। भजन 66:15-19, मैं तुझे मोटे पशुओं की होमबलि, मेढ़ों की चर्बी के धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसकी गुण अनुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। वो कहता है, हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसने मेरी सुन ली है। परंतु वो ये भी कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। बहुत बार हम अचंभे में पड़ जाते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। हमारी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हमारे जीवन में अनर्थ बातें रहती हैं। यशया 59 का पहला पद और दूसरे पद में परमेश्वर कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। दूसरे शब्दों में प्रार्थना ना सुने जाने का कारण सदा ऊपरी छोर नहीं होता, जैसे हम अधिकतर सोचते हैं। क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता? क्या परमेश्वर बहरा है? क्या मेरी आवाज सुनने में उसे समस्या है? क्या गलत हो रहा है? हम ये सोचते हैं कि समस्या परमेश्वर की है। सत्य तो ये है कि अधिकतर समस्या निचले छोर की होती है। हमारी प्रार्थना अनर्थपूर्ण और कपटपूर्ण होती है। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचूं और मन में कपट रखूं, तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। इसलिए नबी कहता है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। क्या परमेश्वर पापियों की प्रार्थना सुनता है? दक्षिणी बैप्टिस्ट चर्च के अध्यक्ष अपने कथन के कारण कठिनाई में पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए कि परमेश्वर किसकी प्रार्थना नहीं सुनता है। नए नियम में एक मनुष्य था जो अंधा पैदा हुआ था, और यीशु ने उसके पास आकर पूछा, क्या तुम देखना चाहते हो? उसने कहा, हाँ, मैं देखना चाहता हूं। तब यीशु ने जमीन पर थूक कर मिट्टी सानकर उसकी आंखों पर लगाई और कहा, शिलो के कुंड में जाकर धो ले। और उस मनुष्य ने शिलो के कुंड में जाकर धोया और वो देखने लगा। ये सब सबत के दिन हुआ, इसलिए यहूदी विचलित हो गए और उस मनुष्य से कहा, ये कैसा हुआ कि तुम देखने लगे? उसने सच बात बता दी। वो मनुष्य आया और उसने मेरी आंखों में मिट्टी लगाई और कहा, जाकर धो ले, और जब मैंने धो लिया, मैं देखने लगा। उन्होंने पूछा, वो कौन था? उसने कहा, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा, ठीक है, हम जानते हैं वो कोई पापी मनुष्य होगा, क्योंकि उसने सबत के दिन का उल्लंघन किया है। उसने कहा, वो पापी है या नहीं मैं नहीं जानता, परंतु मैं ये जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। परंतु यदि वो पापी मनुष्य है तो परमेश्वर कैसे उसकी प्रार्थना सुनता है? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। ये बात प्रार्थना के बारे में सच नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ये अंधे मनुष्य का कथन है जो उसने फरीसियों से बात करते समय कहा। इस विषय में सच्चाई ये है कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना सुनता है, अन्यथा हम सब अब तक पापी होते। परमेश्वर आपकी सुनता है जब आप कहते हैं, हे परमेश्वर, दया कर मुझ पापी पर। वो ऐसी प्रार्थना सुनता है। पता नहीं, दाऊद कहता है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। परमेश्वर ने यशया के द्वारा कहा, यहोवा ऐसा बहरा नहीं हो गया है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। इसलिए दाऊद प्रसन्न है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी है। भजन 66 पद 20। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर की है।